सखी है हे सखी कृष्ण मुख द्विजराज राज। कृष्ण, इसका पहले अनुवाद पढ़ना होगा फिर समझ पाएंगे क्या अर्थ है इसका। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। इस तरह राजा चंद्रमाओं की समाज पर शासन करता है। क्या बोले हे सखी, गोपियां कह रही हैं कृष्ण का मुख जो है द्विजराज राज है। द्विजराज मतलब चंद्रमा और द्विजराज राज मतलब चंद्रमाओं का राजा। और ये कहाँ बैठता है, ये राजा कहाँ बैठता है? जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है तो कह रहे कृष्ण का मुख कहाँ बैठता है, कृष्ण वपु सिंहासन है। कृष्ण का जो वपु है शरीर है वह सिंहासन की तरह है और कृष्ण का मुख कैसा है आपको नहीं मिला अब तक, तो जूम ज्वाइन करवा दीजिए उसमें क्या है कठिनाई देख ही लेंगे। कृष्ण का जो मुख है वह राजा की तरह। वसी राज्य शासने करे संगे चंदेर समाज। वसी राज्य शासन है उसके ऊपर बैठकर राज्य शासन करता है चंद्रमाओं के समाज का, चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। जरा देखेंगे कौन कौन से चंद्रमा है जिनके समाज पे वह शासन करता है वो देखेंगे। तात्पर्य कृष्ण के मुख को चंद्रमाओं का राजा कहा गया है और उनके शरीर को सिंहासन माना जाता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है, मुख है वह शरीर पे रहता है तो इसलिए बोल रहे। अन्य सारे चंद्रमा गौण माने गए हैं। बाया गाल एक चंद्रमा है, दाया गाल दूसरा चंद्रमा है, उनका ललाट, ललाट मतलब माथा, आधा चंद्रमा माना गया है। कृष्ण के ललाट पर चंदन का चिन्ह भी एक चंद्रमा माना गया है, चंदन चर्चित, ठीक है। उनके हाथों तथा पांव के नाखून भी विभिन्न चंद्रमा है। इतना हो गया आपको, थोड़ी देर पहले आना चाहिए तब तो आप समझ में आता है कि हम सूरजमुखी भी हैं ज्वालामुखी भी हैं। तो ठीक है। दुई गंड सुचि काणा जिनी माणी सुदर पाणा से दुई पूर्ण चंद्र जानी ललाटे अष्टमी इंदु ताहाते चंदन बिंदु से एक पूर्ण चंद्रमानी। कितना रसमय है ये, खाली गाने में कितना सुंदर है। एक्चुअली इसको पढ़ने में उतना सुख नहीं लेता है तो गाने में का एक अलग विशेष सुख है। पहले इसका अर्थ समझते हैं, वही जो भी तात्पर्य में आपने पढ़ा था वही इसका अर्थ है। कृष्ण के दोनों गाल चमकीली चमकीले मणियों जैसे हैं। क्यों बताइए, गाल इतने चमकते थे कि जो ग्वाल बाल थे कृष्ण के गाल को देख के तिलक लगा लेते थे। इट्स अमेजिंग इज इट नॉट। दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। दोनों पूर्ण कौन, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं, दोनों गाल ऐसे चमक रहे हैं चंद्रमा की तरह। उनका ललाट अर्ध चंद्रमा माना गया है और वहां लगे चंद्र चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। तात्पर्य तो नहीं लेकिन फिर से बरस के उसको देखते हैं। द्वी गंड सुचिकण, दोनों गाल बहुत चिकने हैं चमकदार हैं। जिनी मण मणि सुदर्पण, जिनी जिनी का अर्थ क्या होता है, जीत लेते हैं। तो कह रहे हैं कि मणि सुदर्पण, कोई दर्पण है जो मणियों को बना है उसको जीत लेते हैं। इसका आशय क्या है, कृष्ण के गाल इतना चमकते हैं कि मणि का चमकेगी उसके आगे, इस प्रकार से बोलते हैं। मणि भी फीका हो रहा है। से दुई पूर्ण चंद्र जानी, उन दोनों गालों को पूर्ण चंद्र मानो। ललाटे अष्टमी इंदु, अब अष्टमी आप जान रहे हैं कि अष्टमी का जो इंदु है यानी 15 दिन के बीच में भाग देंगे तो आठवां, तो अर्ध चंद्रमा हो गया कि नहीं, समझ में आ रहा है। अष्टमी इंदु क्या हो गया, फ्रॉम अमावस्या टू पूर्णिमा, तो आठवां दिन मध्य में पड़ेगा तो चंद्रमा आधा होगा, तो इसीलिए कह रहे हैं ललाटे अष्टमी इंदु, जो ललाट है भगवान कृष्ण का उसको अर्ध चंद्रमा कह रहे हैं। देखिए बिना इसको देखे समझ में नहीं आया कि ललाट को अर्ध चंद्रमा प्रभुपाद अनुवाद क्यों कर रहे हैं, तो आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं इस बात को। तहाते चंदन बिंदु, और उसके ऊपर चंदन का जो बिंदु है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि चंदन का बिंदु ऐसे नॉर्मल गोल टिक्का लगाते हैं या जैसे हम लोग वैष्णव तिलक लगाते हैं वैसा तिलक लगा रहे हैं। गोल ही समझ में आ रहा है, बिंदु तो कहने का तो ये चंदन बिंदु हुआ तो बिंदु ऐसा होगा। से एक पूर्ण चंद्रमा ने, फिर से गाया जाएगा अब तो और समझ में आ रहा है, अच्छा लगेगा।
দুই গন্ডা সুচি কানা জিনি মানি সুদর্পণ সেই দুই পুনা চন্দ্র জানি ললাটে অষ্টমী ইন্দু তাহাতে চন্দন বিন্দু সেই এক পূর্ণ চন্দ্রমানি।
সুন্দর বসে দেখ রে কি আপনি শোনা প্রভুপাদ জি কা চৈতন্য চরিতামৃত কা পারায়ণ, প্রভুপাদ জি কি রেকর্ডিং হ্যাঁ, চৈতন্য চরিতামৃত কা ভি পারায়ণ কর রহে হ্যাঁ প্রভুপাদ জি রেকর্ডিং মে। কতনা প্রভুপাদ কো অচ্ছা লগতা হোগা বাংলা, ও ভি বাংলা তো এসে ভি আতা হ্যায় ব্যক্তি কো, কতনা সুইট হ্যায়।
কর নাখ চাঁদের হাট বংশী উপর করে নাট তার গীত মুরলীর তান পদ নাখ চন্দ্র গাড়া তলে করে দরতন নুপুরের ধ্বনি জার গান।
কতনা সুন্দর সমঝ গে, পহলে অনুবাদ পড়তে উসকে বাদ সুনতে। উনকে হাত কে নাখুন অনেক পূর্ণ চন্দ্রমা হ্যায়, আপ দেখ সকতে কুছ কুছ লোগোঁ কে হাত মে নাখুন জো চমকতা হ্যায়, তো ভগবান কে নাখুন ইতনে চমক রহে জেসে মানো চন্দ্রমা চমক রহা হো, আর ওয়ে উনকে হাতো কি বংশী পর নৃত্য করতে হ্যায়। তো আপ সমঝ সকতে হ্যায় কি জব ভগবান বংশী বজাতে হ্যায় তো এসে করকে হাত চল রহা হোগা, উনকা নাখুন চল রহে হোঙ্গে, তো ও হ্যায় জো নাখুন চল রহা হ্যায় ও চমক রহা হ্যায়। কতনা সুন্দর হ্যায় ইসে, সব ধ্যান মন্ত্র কহলাতে হ্যাঁ, ভগবান কে রূপ পে ইস প্রকার কা ধ্যান করতে হ্যায়, বহুত হি সুন্দর হ্যায়। উনকা গীত উস বংশী কি তান হ্যায়, কিনকা গীত, উন চন্দ্রমাওঁ কা গীত, নৃত্য কর রহে হ্যায় আর গা ভি রহে হ্যায়, তো ও জো বংশী কি তান হ্যায় ও ভগবান কে জো নখ হ্যায় উনকা গীত হ্যায়, ইয়ে কাব্য কহ রহে উনকে পাঁবোঁ কে নাখুন ভি অনেক পূর্ণ চন্দ্রমা হ্যায় জো ভূমি পর নৃত্য করতে হ্যায় আর উনকা গীত উনকে নুপুরোঁ কি ঝংকার হ্যায়। বহুত সুন্দর হ্যায়, এবার ফির সে গায়ে, পহলে সমঝিয়ে। কর নখ চাঁদের হাট, কর নখ, কর মতলব হাত আর নখ মতলব নাখুন, তো হাতো কি জো নাখুন হ্যায় ও চন্দ্র চন্দ্রমাওঁ কি হাট হ্যায়, বাজার হ্যায় ভাই। আপ হাট তো শুনে হোগে, আপ ইহা পে হাট কার্ট হতা হ্যায়, আপনি দেখা হাট কার্ট ইহা পে শুনে হ্যায়, গাঁও কি জো বাজার হতি উসকো হাট কহতে হ্যায়, আপ কবি নি শুনে শব্দ কো হাট, হাট লাগিয়ে নাম হাট তো বলতে হি হামলোগ, নাম কা বাজার হাট, হাট মতলব ভিড় হ্যায়, যেসে কালি তো কহ রে কি ও চন্দ্রমাওঁ কা বাজার হ্যায়, চন্দ্রমাওঁ কি ভিড় হ্যায়, বহুত সারে চন্দ্রমা হাত কে রূপ মে, মানে কিতনে হোগে, পাঁচ বাস দশ হোগে, দশ চন্দ্রমা, আর বংশী উপর করে নাট, নাট মতলব নৃত্য, यानी वंशी के ऊपर कौन नृत्य कर रहे हैं, कर नख रूपी चंद्रमा। तार गीत मुरली रा तान, किस और इन चंद्रमाओं का गीत क्या है जो मुरली की तान कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं, वह उस खिड़की को बंद कर दीजिए, बाहर से आवाज नहीं आएगी, पीछे वाली। फिर अगला वाला लाइन देखिए, पद नख चंद्र गण, पद मतलब चरण, चरण के नख जो है वह जो चंद्रगण है वह भी चंद्रगण के समान है, एक नहीं दस चंद्रगण के समान है। तले करे नर्तन, नीचे वह नर्तन कर रहे हैं, भूमि पे कृष्ण नर्तन कर रहे हैं और नुपुर ध्वनि जा रहे गान। फिर से एक बार बोलें इसको, अब तो अर्थ समझ में आया।
कर नाख चांदेर हाट वंशी ऊपर करे नाट तार गीत मुरली रतान पद नाख चंद्र गाना तले करे नर्तन नुपुरे रा ध्वनि जार गान।
आज मेरा नलायक मन कह रहा था तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, तुम्हें 10 बजे की क्लास नहीं करनी चाहिए, रेस्ट करो। देख रहे मन कैसे बोलता है, लेकिन इतना सुंदर है कैसे छोड़ दे इसको। आगे
नाचे मकर कुंडला नेत्र लीला कमाल विलासी राजा सतत नचाय भूधनु नेत्र बाण धनुर्गुण दुई काण नारी मन लक्ष्य बिंद धाताय।
कृष्ण का मुख विलासी राजा है, उनका वह पूर्ण चंद्रमा रूपी मुख उनके मकराकृति कुंडलों तथा कमल नेत्रों को नचालने वाला है। समझ रहे हैं, कृष्ण अगर मुख करेंगे तो उनकी कुंडल नाच रहे हैं और आप ये भी जानते हैं कि आंखें हैं वह भी नाचती रहती, कृष्ण केवल ऐसे सीधे नहीं देखते, कभी इधर देखते कभी उधर देखते, कभी ऐसे करके इधर उधर वह कृष्ण लगातार देखते रहते हैं। उनकी भौएं धनुष के समान है और उनकी आंखें बाणों जैसी हैं। कल भी हम सुन रहे थे ना स्मिता व लोक, तो ये कभी कई बार इस प्रकार की उपमा आएगी कि देखिए ना भौएं एकदम धनुष जैसी दिखती हैं, आंखों से जो कटाक्ष है कृष्ण का वो बाण के समान है, ये कह रहे हैं। उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं, धनुष की डोरी पर स्थित है, धनुष की डोरी पर स्थित है, ये समझ नहीं आ रहा। धनुष की डोरी तो ऐसी होती है, अच्छा, लेकिन आंखें तो बाण जैसी है ना, भौवें धनुष जैसी, तो भौवें कान तो होंगे, अब जो भी लिखा है तो ऐसे ही है। और जब उनकी आंखें उनके कानों तक फैलती हैं, अभी आप बता ही रहे थे, आपके मुख से तो शास्त्र प्रकट हो रहा है तब कृष्ण गोपियों के हृदयों को भींद देते हैं। हमारे लिए मुश्किल लगे कि ऐसा तो हम कोई देखते नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आंखें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो आंखें एकदम कान तक जा रही हैं, कान तक जा रही हैं, कान तक लिटरली नहीं जा रही होंगी, लेकिन अब क्या हो सकते हैं, कुछ कह भी तो नहीं सकते, कृष्ण गुस्सा हो जाएंगे, कुछ उल्टा बोल देंगे, तो और जब कृष्ण दिखेंगे तो समझ में आएगा। जूम के डिवोटीज आप में से किसी को पता है, हैव यू सीन, नो, दे आल्सो हैव नो आईडिया, किसी ने नहीं देखा, सदाशिव प्रभु मना कर रहे, नहीं देखा, लेकिन फिर से गा लेते हैं। नाचे मकर कुंडल, मकर कुंडल समझ गए, जो मकराकृति कुंडल नाच रहा है, नेत्र लीला कमल, नेत्र भी नाच रहे हैं कमल के समान है। विलासी राजा सतत नचाए, राजा कौन था, भगवान का मुख था, जो कि भगवान के शरीर रूपी सिंहासन पर बैठा हुआ था, तो विलासी राजा मतलब हो गया भगवान का मुख इनको नचाता रहता है। भू धनु, भू मतलब भ्रू, भवे धनु है, नेत्र बाण है, और धनुर्गुण दुई काण, धनुर्गुण धनुष की तरह, धनुर्गुण धनुष की प्रत्यंचा दोनों कान है। नहीं समझ में आ रहा तो क्या दिक्कत, हम तो ठीक से नहीं समझ रहे थे, कोई बात नहीं, फिर से एक बार गाएं इसको। नाचे मकर कुंडला नेत्र लीला कमाल, विलासी राजा सत नचाए, भूधनु नेत्र बाणा धनुर्गुणा दुई काणा, नारी मन लक्ष्य बिंधेताए। महाराज से पूछ लेंगे, नोट कर लीजिए 129, जस्ट सेंड मी द नंबर, आई विल आस्क फॉर महाराज, ये महाराज इसको क्यों, हम क्यों बोला जा रहा है, महाराज को पूछूंगा तो महाराज खुश हो जाएंगे, मुझे पता है।
ऐ चांदेर बड़ नाट पसारी चांदेर हाट, विनिमूले विलाय ने जामृत, काहो स्मित ज्योत्नामृते काहारे अधरामृते, सब लोक करे आप्यायित।
उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है और पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार को विस्तृत करता है। मुख का नृत्य करता स्वरूप में क्या क्या नृत्य कर रहा था, उनकी आंखें नृत्य कर रही थी और के कुंडल नृत्य कर रहे थे, और सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार लेता है, यानी कि नख, कर्णख, पदनख और दोनों गाल भी, दोनों गाल तो मुख पे ही आ गए, इतना कहां समझने वाले हैं, सामर्थ्य जो है लिखा उसको समझने का प्रयास करते हैं। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है, अर्थात सभी लोग उसको देखते हैं। कुछ उनकी मृदु हंसी की चरण किरणों को खरीदते हैं, कितना सुंदर काव्य है, तो कुछ उनके होठों के अमृत को, इस तरह वे सबको तुष्ट करते हैं। तात्पर्य तो कुछ दिया नहीं गया है, मृदु हंसी की चरण किरण चंद्र किरणों को खरीदते हैं, क्या बस खाली बोलेंगे फिर से एक बार,
ए चांदेर बड़ा नाट पसारी चांदेर हाट, विनिमूले विलाय ने जामृत,
विनिमूले मतलब बिना पैसा दिए ही अमृत दे रहा है सबको, विलाय बांट रहा है,
काहो स्मित ज्योत्स्नामृते,
ज्योत्स्ना समझ रहे हैं चंद्रमा का, चांदनी, और स्मित जो है भगवान कृष्ण की उसको चांदनी से कंपेयर कर रहे हैं।
काहो स्मित ज्योत्स्नामृते काहारे अधरामृते सब लोक करे आप्यायित।
प्रभुपाद जी कुछ तात्पर्य इसमें क्यों नहीं दिए? खैर गाने में ही आनंद आ रहा है कुछ, बाकी तो जो भी है।
विपुलायात विपुलायातारोण मदन मद घुण नन मंत्री जारा ए दुई नयन लावण्य के लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन।
कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र हैं। लाल लाल गार्ड समझ रहे हैं, हमारे जो आंख का इधर साइड वाला भाग है, मतलब जो काले भाग होता है, काला क्या पुतली कह लीजिए, साइड की तरफ जो व्हाइट व्हाइट भाग है उसमें कृष्ण की लालिमा रहती है। एकदम भयानक लाल नहीं दिखना चाहिए, हल्की हल्की लालिमा रहती है, ये बात बोलना। ये राजा के दो मंत्री हैं आंखें, और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है, और ये सभी सबके नेत्रों को अत्यंत सुहावना रखता है। शब्दों को देखते हैं,
विपुल आयतारुण,
विपुल आयत यहां पे लिखा है, विपुल आयत मतलब बड़े बड़े बड़े, और अरुण मतलब लाल।
मदन मद घूर्ण, मदन के मद को घुमा देने वाले,
मदन कामदेव भी मोहित हो जाए ऐसे भगवान की आंखें हैं।
मंत्री जार एई दुई नयन,
भगवान के नयन का वर्णन हो रहा है, क्या क्या विशेषण है, एक बहुत बड़े हैं थोड़े लाल लाल से हैं, और उनसे कामदेव का मद भी चूर्ण हो रहा है।
लावण्य केली सदन, लावण्य का अर्थ आपने सुना था याद आ रहा है, ललित अर्थात सुंदर, अब केली का अर्थ यहां पर क्या रखा गया है,
केली कहां दिख रहा है आपको,
लावण्य केली सुंदरता की लीलाओं के निवास है, मतलब बहुत सुंदर सुंदर लीलाओं का विलास प्रस्तुत कर रहे हैं।
कहाँ गया, अरे पीछे जाना था।
और जन नेत्र रसायन,
लोगों के नेत्र का को आनंद देने वाले, देखिए आयन का अर्थ होता है मतलब खजाना, यस यस, यहां पे भंडार कह लीजिए, और रस मतलब सुख, और नेत्र रसायन का अर्थ क्या हुआ, जो नेत्र को सुख देने का भंडार है। क्या भंडार है, कृष्ण के ये दो मंत्री ना, सुखमय गोविंद वदन, गोविंद का मुख जो है वह लोगों का, लोगों के नेत्र का रसायन है। जैसे यहां पे लोग कुछ रसायन पीते हैं, उस प्रकार से गोविंद के मुख को देख करके लोग मानो नेत्रों से रसायन पी रहे हो, ये कहने का आशय।
फिर से बोले बहुत अच्छा है ना, विपुलायतारुण मदन मद घूर्णन मंत्री जार ए दुई नयन लावण्य केली सदन जन नेत्र रसायन सुखमय गोविंद वदन। जार पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले दुई आखी की करी बेपाने।
स्पष्ट है,
द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ पीते नारे मन क्षोभ दुख करे विधिर निंदने।
जार पुण्य पुंज फले, पुंज मतलब राशि और पुण्य मतलब पुण्य, जिनके पुण्य की राशि अत्यधिक पुण्य की है, फलीभूत हो गए हैं पुण्य से, मुख दर्शन मिले उसको, ये भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त होता है। जब ये मिलता है तो कह रहे हैं कि दुई आंखी की कोरी बे पान, ये दो आंखें कैसे कृष्ण के रूप का पान कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों को अनुभव हुआ होगा कि हम तो कई बार मजाक में बोलते हैं
किसी भक्त के यहाँ पे जाते हैं, मानो गृहस्थ के यहाँ पे, और भक्त लोग माता जी अच्छा प्रसाद बनाती हैं, तो कहते हैं और क्या चाहिए, उन्होंने कहा एक पेट और दे दीजिए, एक पेट से इतना अच्छे खाने का हम आसाधन कैसे कर सकते हैं। ऐसा अनु खाली खाने के लिए होता है हमारा। ये दुर्भाग्य है, ना नाम के लिए होता है ना कथा के लिए होता है, ये कठिनाई है। तो लेकिन जो भी है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिसका महान महान पुण्य राशि फलित हो गई है, आज आप बीज डाले हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि फल काट खाएंगे, तो कह रहे हैं कि पुण्य राशि अत्यधिक है और वह फलीभूत हो रही है, उसे भगवान से प्रेम है, तब भगवान कृष्ण का दर्शन इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो जब इस प्रकार का दर्शन प्राप्त हो रहा है, और क्या है, नेत्र जन नेत्र रसायन है ऐसा, तो दो दो आंखों से क्या पान करेगा। द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, जितना देख रहा है उतना डबल डबल और तृष्णा और देखने की इच्छा बढ़ रही है। पीते नारे मना शोभ, पीते नारे मना शोभ, पी रहा है व्यक्ति, देखिए गलत नहीं बोलना चाहिए भाई, पीने की असमर्थता से मन में अधीरता हो रही है। पीने की असमर्थता मतलब समझ रहे हैं भाई, दो मुख से मैं कितना पी पाऊंगा, ये अर्थ। तो ये लाइन समझ में आ रही है, द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, जितना वो देख रहा है उतना कृष्ण को देखने की इच्छा और बढ़ रही है, और दो आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो पीते नारे पी नहीं पा रहा है, तो मन में क्षोभ हो रहा है, दुख हो रहा है, और दुख के कारण वह विधि अर्थात ब्रह्मा जी की निंदा कर रहा है। यदि किसी की भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है और वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है, तो वह अपनी केवल दो आंखों से क्या आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उसका लोभ तथा उसकी तृष्णा दोनों दुगने बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से पी ना सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है और सृष्टा की आलोचना इसलिए करने लगता है कि उसने दो से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। एक बार फिर से कहा जाए,
जारा पुण्य पुंज फले से मुख दर्शन मिले, दुई आँखी की कोरी बेपाने, द्विगुण बाढ़े तृष्णा लोभ, पीते नारे मना क्षोभ, दुखे करे विधिर निंदने।
तो सब व्याख्या उसकी हो रही है, तृष्णा का मतलब होता है प्यास, तो और पीने की इच्छा हो रही है। ये अद्भुत है कि मान लीजिए मैं ये पानी का गिलास पी रहा हूं, पानी पी रहा हूं, जितना पी रहा हूं उतना प्यास कम कम हो रही है, नहीं बढ़ यहां पे हो रही है। यहां पे आप देखते हैं पानी पीने से प्यास कम होती, लेकिन क्या है, कृष्ण को देख रही है तो कृष्ण के मधुरता के अमृत को पीने की इच्छा और बढ़ रही है, और दो दो अन्यत्र से पी नहीं पा रहे, इसलिए ब्रह्मा जी की निंदा कर रहे हैं। ये श्लोक इसका ये वाला नहीं था, अच्छा वो हम लोग उसकी व्याख्या सुन रहे हैं ना, कि गोपियां किस प्रकार से ब्रह्मा जी की निंदा करती हैं। ठीक है,
ना दिले का लक्ष कोटि, सबे दिला आंखे दूटी, ताते दिला निमेश आच्छादन, विधि जड़ तपोधन रस शून्य तार मन, नाही जाने योग्य सृजन।
अर्थ समझ में आ रहा डायरेक्ट, जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह असंतुष्ट हो जाता है तो वह सोचने लगता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उसने मुझे केवल दो ही आंखें क्यों दी, यहां तक कि ये दोनों आंखें भी पलक झपने के कारण विचलित होती हैं, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार देख नहीं पाता। इस तरह मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क तथा रस विहीन है। विधाता केवल एक शुष्क रस शून्य सृष्टा है, वह यह भी नहीं जानता कि किस तरह वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। समझ में आया, ना दिले का लक्ष कोटि, हमको दिया नहीं लाखों कोटि, लक्ष कोटि लाखों करोड़ों कान नहीं दिए। मुंह से देखिए, मन में सोच रहा हूं, आंखें मुंह से मुख से निकल रहा है कान, वैसे कान वाला भी एग्जाम्पल है अलग जगह का, अलग कंटेक्स्ट में ऐसे ही बोलते हैं कि लाखों करोड़ों कान क्यों नहीं दिए, हम कृष्ण कथा से क्या श्रवण कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आंखों की बात हो रही, क्षमा कीजिएगा, ना दिल लेकर लक्ष्य कोटि, अच्छा कम से कम ध्यान से सुन रहे हैं, आपने ये ब्रह्मा जी ने हमको लाखों लाखों आंखें क्यों नहीं दी, सबे दिला आंखें दुटी, सभी को केवल दो दो आंखें क्यों दी, ताते दिला निमेश आच्छादन, और उसके ऊपर भी निमेश आदन बार बार ब्लिंक करती हैं तो हम कृष्ण के रूप का आस्वादन नहीं कर पाते, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों किया। मान लीजिए कोई पूछे तो कह रहे विधि जड़ तपोधन, उस विधि की, उस ब्रह्मा जी की जो तपस्या है वही उसका धन है। आपको याद ही होगा कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो भगवान बोले कि तुम मुझे ऐसे नहीं देख पाओगे, तप तप करो, यही तुम्हारा धन है, यही इसके द्वारा तुम मुझको देख पाओगे। तो कह रही कि तब ब्रह्मा जी तो हमेशा तपस्या में लगे रहते हैं, इस कारण से उनकी बुद्धि जड़ हो गई है, रस शून्य तारमन सूख गया है, इतनी तपस्या की है कि उनका मन जो है रस से शून्य हो गया है, वो समझ नहीं पा रहे कि कृष्ण के मुख में कितना रस है, मुख में नहीं कृष्ण, हाँ मुख में मतलब मुख कृष्ण के कोई मुख को देखने में कितना रस है वो समझ नहीं रहे, ना ही जाने योग्य सृजन, इसलिए वह समझते नहीं है कि सृजन किस तरह से किया जाना चाहिए। फिर से कहेंगे ना दिले का लक्ष कोटि सबे दिला आँखी दूटी ताते दिला निमेश आच्छादन विधि जड़ तपोधन रस शून्य तारमन नहीं जाने योग्य सृजन। ये देखी वे कृष्णानन तार करे द्विनयन विधि हैया हे ने अविचार मोर यदि बोल धरे कोटि आखी तार करे तबे जानी योग्य सृष्टि तार।
सृष्टा कहता है जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी दो ही आंखें हों। जरा इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो, यदि वह मेरा परामर्श मानता तो वह कृष्ण का मुख देखने वालों को करोड़ों आंखें देता, यदि वह मेरे इस परामर्श को मान ले तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में पटु है। इससे एक बात तो समझ में आना चाहिए कि इनका कितना विशेष अद्भुत प्रेम है जिस प्रकार से कृष्ण के सौंदर्य का वह अनुभव कर पा रहे हैं। क्या अर्थ है देखिए, हम लोग तो स्वाभाविक रूप से सुन रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि हम बहुत दूर हैं इससे, है कि नहीं, भगवान के विग्रह को भी 2-5 मिनट देख लिया है कि नहीं, तो बहुत है, अब अगले दिन तक नहीं देखना है भगवान को। इस पर मुकुंद प्रभु कितना बोलते ना, कहते हैं वी ऑलवेज वॉन्ट कृष्णा टू बी आउट ऑफ द पिक्चर, दैट इज द नेचर ऑफ कंडीशन सोल। बद्ध जीव का ये स्वभाव है कि वह चाहता है कि कृष्ण सामने ना रहें, एक अविद्या की भावना रहती है, अविद्या के कारण ऐसा होता है कि कृष्ण का संपर्क ना रहे। देखिए ना, माला जैसे पूरी हो जाती है प्रायः हम सब बद्ध जीवों की, मैं सबकी बात नहीं बोल रहा, अच्छा लग रहा है, माया से सॉरी माला से मुक्ति मिल गई, ये स्थिति प्राय रहती है लोगों की, बुखार वाली स्थिति रहती, धीरे धीरे ठीक होगा, अभी माँ की तरह कृष्ण हम लोग को चटा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा भक्ति का रस, एक दिन हम जग जाएंगे। जे देखी बे कृष्ण आनंद, आनंद का अर्थ क्या होता है, मुख, तो जो कृष्ण का मुख देखते हैं तार करे द्वि नयन, उनको दो नयन दिए जाते हैं, विधि हो या हे ना अविचार, विधि मतलब ब्रह्मा जी ऐसा सोच रहे कि विधि, ब्रह्मा जी सोच रहे इनके पास दो आंखें होनी चाहिए बहुत है, लेकिन उनको पास कोई विचार शक्ति नहीं है। मोर यदि बोलत हरे, मेरी बात अगर वो मानते हैं तो कोटि आंखी तार करे, तो वो व्यक्ति जो कृष्ण को देख रहा है उसे करोड़ करोड़ आंखें देने चाहिए, तभी जाने योग्य सृष्टि तार। एक जगह तब हम मानेंगे कि उसको ठीक से सृष्टि करने आती, एक जगह समझ रहा महाराज से सुना था कि ये बात की, देखो इंद्र को 1000 आंखें दी है और क्या देख रहा है उससे, अप्सराओं को देख रहा है, और हम कृष्ण को देखना चाहती है हमको दो ही आंखें दी, ये क्या मतलब है।
जे देखी बे कृष्णानन तार करे दुनयन विधि हैया हे न अविचार मोर यदि बोला धरे कोटि आँखी तार करे तबे जानी योग्य सृष्टि तार।
ठीक है,
कृष्णांग माधुर्य सिंधु सुमधुर मुख इंदु अति मधु स्मित सुकिरणे एति न लागिला मान लोभे क स्वादन श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने।
आप लोग लग रहा होगा कि सब थोड़ा हाई फाई है, वैसे इतना हाई फाई तो नहीं लग रहा, कृष्ण के रूप का ही वर्णन है। और देखिए हम लोग कभी पढ़ेंगे भी नहीं, हाई फाई करते हुए सोचते हो छोड़ देंगे पूरा जीवन ही छूट जाएगा, पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं। ये बात है, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई है। उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है। थोड़ा सा चंद्रमा देख पा रहे हैं सागर में, नहीं दिखाई पड़ रहा। कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, चंद्रमा है और चंद्रमा में सागर उदित हो रहा है, कितना सुंदर लगेगा। क्या कोई फोटो, हम लोग तो गूगल पे ही देख सकते हैं सब कुछ। मून राइजिंग इन ओशियन, कोई इमेज नहीं आ रही इसमें तो। हाँ, लुक्स क्वाइट ब्यूटीफुल, लुक्स नाइस। तो आप लोग अपने अपने एंड पे देख लीजिएगा। अब इसको तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं यहाँ पे, लेकिन मे बी आई कैन शो, आई डोंट नो। ओके, यस, आई हैव सीन, होल्ड ऑन, कैन यू सी नाउ फॉर अ मोमेंट, समझ में आइए, लाइक दैट ब्यूटिफुल चंद्रमा और उसकी जो रोशनी है वह है इस प्रकार से आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, वापस इस पे आ जाते हैं। तो सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है, और इससे भी अधिक अद्वितीय दूसरा दृश्य उनकी मुस्कान है जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसी है। अभी आपने फोटो में दिखाया था ना कैसे चंद्रमा रोशनी फेंक रहा है और वह है समुद्र के ऊपर आ रही है। सनातन गोस्वामी से ये बातें बतलाते श्री चेतन महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे। उन्होंने भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया, फिर एक श्लोक आने वाला है। आहा, वो श्लोक बहुत सुंदर है, सो तो गाएंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेंगे। कृष्णांग माधुर्य सिंधु, कृष्ण के अंग मधुरता के सिंधु सागर है। सुमधुर मुख इंदु, और उनका मुख जो है अत्यंत सुमधुर मुख जो है वह इंदु है, चंद्रमा के समान है जो उस सागर के ऊपर उदित हुआ है। अति मधुस्मित सुकिरण, जो उनकी अति मधु मुस्कान कह सकते मधुर मुस्कान है वह किरण की तरह है। ए तीन लागीला मन लोभे करे आस्वादन, इन तीनों में महाप्रभु का मन लग गया और लोभ से इसका आस्वादन करते हुए एक श्लोक बोला। स्वहस्त चलन, अपने हाथ को चलाते हुए एक श्लोक और बोल रहे हैं, फिर से सुखाएंगे।
कृष्णांग माधुर्य सिंधु सुमधुर मुख इंदु अति मधु स्मित सुकिरणे,
कैसे मृदंग बजेगा इसमें।
एति ने लागिला माना लोभे करे आस्वादन श्लोक पढ़े स्वहस्त चालने।
तो अब श्लोक क्या पढ़ रहे हैं इसको मेरे से जरा बजाएंगे मृदंग, उस पे आएगा ये भजनी पे।
मधुरम मधुरम वपुरस्य,
कोई कैन यू चैंट ऑन द माइक चैंटर।
मधुरम 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 नहीं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुगंधे मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुगंधे मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुगंधे मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम
मधुरम मधुरम अस्य वपुः विपुः इन विभुवन भगवान का वपु अर्थात शरीर अत्यंत मधुर है, मधुर से भी मधुर है। मधुरम मधुरम वदनम मधुरम इनका वदन अर्थात मुख मधुर से भी मधुर, मधुर से मधुर और अधिक मधुर है। मधुगंधि मृदु, गंधि का अर्थ है मधु, गंध मतलब खुशबू उनकी, मधुगंधि ओहो शहद की गंध और मधुस्मित इनका जो स्मित मुखसान है वह भी अत्यंत मधुर है। मधुरम 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 हे प्रभु कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधुगंध की तरह है, शहद की मुख अमेजिंग बात है, शहद की गंध के समान उनकी हंसी है। शहद की गंध सोचने वाली बात और भी मधुर है। आपने एक चीज श्लोक में देखी, देखिए दो बार बोल रहे हैं मधुरम मधुरम वपु के लिए और वदनम मधुरम के लिए ना, हाँ जो मुख है उसके लिए तीन बार बोल रहे हैं और जो मधु स्मित है उसके लिए चार बार मधुर बोल रहे हैं, है ना? नोटिस करने वाली बात है, दो बार मधुरम मधुरम बापू के लिए, तीन बार मधुरम मधुरम वदन के लिए और चार बार मधुरम मधुरम स्मित मुस्कान के लिए। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बापू बहुत सुंदर है, उससे अधिक उनका सुंदर मुख है और उससे अधिक सुंदर उनकी स्मित मुस्कान है। कितना अद्भुत है, एक एक श्लोक है कि नहीं, इंटरेस्टिंग है। यह श्लोक बिल्व मंगल ठाकुर कृत कृष्णा कृत नामृत से उद्धृत है। एक बार जरूर ध्यान रखिए, सारे श्लोक बस रस से और प्रेम से भरे हुए हैं। देखिए बिल्व मंगल ठाकुर को ये कृष्ण के स्वरूप का और मधुरता का अनुभव हुआ, इसलिए उनके हृदय से ये बात बाहर आ रही है। केवल इसको संस्कृत श्लोक समझ के नहीं छोड़ दीजिएगा और इसलिए सुनने में भी कितना सुंदर लग रहा है कि नहीं? मन कर रहा फिर से गाएं, अगर आप लोगों की परमिशन तो एक बार और गा सकते हैं। कैसे हम इतने श्लोक सुंदर श्लोक से तृप्त हो सकते हैं, एक बार और गाते हैं।
मधुरम मधुरम
दुगी
मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर् मधुरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर् मधुरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम
मधुगंधे मृदु स्मितमेतदहो मधुरम मधुरम मधुरम
मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर् मधुवरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुरम मधुरम वपुरस्य विभुर् मधुरम मधुरम वदनम मधुरम
मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम
मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम मधुरम
एक बार
मधुरम
मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम
मधुगंधि मृदु स्मितमेतदहो मधुरम 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 मधुरम।
हृदय में कहीं में इच्छा तो आ ही रहेगी, काश इस प्रकार से कृष्ण के मधुर स्वरूप का दर्शन हमको भी हो जाए। इसके बाद महाप्रभु इस श्लोक की व्याख्या करेंगे, उसको हम लोग कल देखेंगे, इसको जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहता। किस प्रकार से कृष्ण के रूप की मधुरता का वर्णन महाप्रभु कर रहे हैं उसको हम कल देखेंगे। एंड सिंग अधरम मधुरम भजन एट द एंड ऑफ क्लास ऑफ पॉसिबल, नॉट नाउ बट आई एम प्लानिंग टू चैंट इन द इवनिंग अधुरम मधुरम ऐसे करके, आई थिंक इट इज बाई वल्लभाचार्य, आई डोंट नो, बहुत सुंदर भजन है। सो विल दैट विल सिंग इट इन द इवनिंग टूडे, प्लानिंग टू डू दैट। थैंक यू ऑल। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत की जय। स्वीटेस्ट कृष्णा की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।